राम।
यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 25 मई 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम
राम राम राम राम राम राम राम कृष्ण वल्लभम परम ब्रह्मराक्षी सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदासनम प्रपन्न पारिजाताय तुलसी श्री गोपाल जी के नमोस्तुते कृष्णाय गीता मुस्कुराई नमः वंदे तुलसी ओंकार स्वामी देव की परमानंदम कृष्णम वंदे सुगुरु वंशी ओष्ठ करार नवनी नारायण 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 नारायण। अब लोग ध्यान देकर के सुने, गीता में एक योग निष्ठा है, एक सांख्य निष्ठा है। लोकेश्वर द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मयान संघान योगी न सांख्या नाम कर्म योगी न योगी नाम। तो ज्ञान योग से सांख्य योगी होगी, ज्ञान योग से कर्म योगी, कर्म योगी योगी कर्म योग से। तो दो निष्ठाएं है, दो निष्ठाओं का फल एक है। एक मप्यस्त सांख्य ही प्राप्त स्थान हम तद योगे गम्य थे। एक सांख्य योग या प्रशंसा सांख्य योग पृथक बाला प्रबंधन थे न पंडिता। एक व्यास समय से फलम चौथा पांचवा पांचवे अध्याय का वो तीसरे अध्याय का तीसरा है। तो दोनों का फल एक होता है। सांख्य निष्ठा में खास क्या बात है? खास बात विलक्षण ये है गीता की, बहुत अलौकिक विचित्र क्रियाएं जितनी हो रही है वे केवल प्रकृति में हो रही है, पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं है। खास बात यह है, अपने जो अपने आप को आप मानते हो ना, मैं हूं का अर्थ हो गया अपनी सत्ता होनापन। मैं में जो अहंकार है ये तो है अपरा प्रकृति का अंश। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि देवच अहंकार इति इयम, ये अहम है वो इदंता से आ गया है। अहंकार इति इयम तो अहंकार भी इदम में आ गया, अपरा इयम तो भी इदंता में आ गया। इतस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता, वो जीव रूप बनी हुई प्रकृति मेरी है। तो जीव रूप प्रकृति बनी हुई है ये परमात्मा का साक्षात अंश है। वास्तव में सांख्य दृष्टि से परमात्मा के कुछ टुकड़े नहीं हुए, अंश नहीं हुआ है। प्रकृति के अंश को पकड़ने से इसको अंश संज्ञा, इसकी अंश संज्ञा होगी। पकड़ा तो है प्रकृति का अंश को, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अभ्यक्त में उसे इंद्रियाणि 10 एक अंश पंचतेंद्रिय 24 तत्व है। ये है करने वाले 24 तत्व है, इन तत्वों को करने वाले ये है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे, प्रकृति के गुणों के द्वारा संपूर्ण क्रियाएं होती है। जितनी क्रियाएं होती है प्रकृति गुणों के द्वारा होती है। अहंकार से मोहित अंतकरण वाला जो ये अहम अहम वृत्ति है, ये अहम अहम वृत्ति हमारा अंतकरण उसकी है। परंतु ये अहम मूल है जो महाभूता निहंकार वो अहंकार वो एक ही है। उस समस्त अहंकार के व्यस्ति अहम वृत्ति है। इस अहम वृत्ति से मोहित अंतकरण हो गया, मन अपने को एक देश में मान लिया, परिच्छिन्न मान लिया अपने को, ये गलती हुई है। वो कर्ता मान लेता है, अहंकार से मोहित अंतकरण वाला कर्ता अहम इति मान्यते, तो अहंकार है उसे मोहित अंतकरण मानता है, तो मोहित अंतकरण वाला मैं करता हूँ वैसा मानता है। इस पर ध्यान दें, तो अहंकार से मोहित होने वाला ये वह चेतन और अहम हुई वृत्ति, इससे मोहित होना अहम और चेतन का मिलना, इसी को जड़ चेतन ही गांठी पर ही कहते हैं। चित जड़ ग्रंथि, मानो परमात्मा का अंश वो तो है चेतन और अहम है जड़ प्रकृति का अंश। प्रकृति का अंश अहम और परमात्मा का अंश चेतन, केवल सत्ता मात्र मैं हूं। इसमें मैं तो है प्रकृति का और हूं है परमात्मा का। हूं नाम है, मैं होने से हूं नाम हुआ, मैं नहीं हो तो है ही होगा। किसी सीधी बात है, थोड़ा सा व्याकरण जाने वो भी समझता है कि अस्मदुत्तम अस्मद होने से अहम आता है, नहीं तो अहम नहीं आता, वो तो प्रथम पुरुष ही रहता है। अरे अहम जो प्रकृति का छोड़ दिया तो मैं नहीं रहा, है रहा, हूं नाम नहीं होगा। हूं नाम तो होगा मैं होने से, मैं न होने से है रहा। तो मैं तो ये प्रकृति, ये अपरा प्रकृति है मैं, और हूं है ये साक्षात परमात्मा का है स्वरूप। मम ही वायुशो जीव लोक जीव भूत सनातन अनादिकाल से मम एव अंश, केवल मेरा ही अंश है। इसमें मिश्रण किसी का नहीं है, किसी का मिश्रण नहीं है, मेरा साक्षात मेरा अंश है। ये भगवान कहते हैं मम एव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन अनादिकाल से। तो ये स्वयं रहा, स्वयं है, उसमें किंचित कर्तृपणा नहीं है। अहंकार से मोहित अंत करने वाला कर्ता मिति मन्यते, और तत्ववित्तु और तत्ववित्ता तो ये तो आया, मन तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग, गुण और कर्मों के, क्रिया और पदार्थों के विभाग को जानने वाला तू महा गुण कर्म विभाग। गुणा गुणेश वर्षन थे, गुण ही गुणों में वर्ष रहे हैं। अपने स्वरूप है चेतन, उसमें क्रिया नहीं है, ये वर्तनते है क्रिया। या एक बीच में बता दें कर्मयोग की बात, कर्मयोग क्या कहता है, यदा ही नेन्द्रिया से सु न कर्म सु अनुसद्य थे, ना तो भोगों में आसक्त होता है ना क्रियाओं में आसक्त होता है, और संपूर्ण संकल्पों का त्याग, संकल्प मेरे ये करना ये करना, संकल्प त्यागी है तो योगारूढ़ होता है। जो योगारूढ़ अवस्था होती है वही सांख्य की आरंभ से अवस्था है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, केवल प्रकाश मात्र। जैसे सूर्य के प्रकाश से कोई शिकार खेलता है और कोई सूर्य के प्रकाश में वेद पाठ करता है, तो क्या शिकारी की हिंसा सूरज को लगती है, क्या वेद पाठ का पुण्य सूरज को होता है, ना, वो करने वाले को होता है। दोनों को प्रकाश मिलता है, तो चेतन का प्रकाश तो सबको मिलेगा। कर्मयोगी है वो तो उनमें कामना है आसक्ति है इसका त्याग करता है, और सांख्य योगी है कर्तृत्व का त्याग कर देता है। मूल में नहीं वो किंचित करो में थी युक्तो मन ये तत्वित, किंचित मात्र मैं करता नहीं हूँ, अपने में अकर्तापन अभोगतापन स्वतः जानता है। कर्ता भोगता है संसार, वेदांत में यही होता, कर्ता भोगता संसार, करते भोगत संसार है। तो कर्ता भोगता प्रकृतिपन है, अपने में कर्तापन नहीं है भोगतापन भी नहीं है। तो कर्तापण को हटाना काम सांख्य योग का और भोगतापण का संबंध हटाना कर्म योग का, पर दोनों मटाकर दोनों दोनों हो जाते हैं। वो कामना मिटने से कर्तृत्व मिट जाता है और कर्तृत्व मिटने से कामना मिट जाती है, दोनों में एक बात हो जाती है, एक स्थिति जो सांख्य प्राप्त से स्थानम तद योग से वो योग योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो सांख्य योग प्रसंग है, अलग अलग नहीं है। फिर ये लोकेश ने द्विविधा निष्ठा कहा, ये साधक की है। साधक जब यहाँ योग निष्ठा सकता है और सांख्य निष्ठा से चलता है, तो सांख्य निष्ठा मैं कुछ करता नहीं हूँ ये मानता है, और सांख्य निष्ठा सिद्ध होने पर अनुभव करता है। और कर्मयोगी योगी नाम कर्मयोग से कर्मयोगी चलता है तो वो मानता है निष्काम भाव अपने में, और निष्काम भाव से सिद्ध होने पर कामना रहती ही नहीं। तो कामना रहती ही नहीं, अहंकार रहता ही नहीं, तत्व तो रहता है दोनों में, चाहे कर्म योग से हो चाहे ज्ञान योग से हो, तत्व है से अशुद्ध निर्विकार रहता है। तो सांख्य योगी पहले से ही तत्व में स्थित होता है, और कर्म योगी पहले कर्मों की योग होता, कर्म का योग समत्व योग उचित समता में स्थित रहते, सिद्ध सिद्ध समभूतव ये वो कर्म योग होगा। तो सिद्धि असिद्धि में सम मन न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है। बाह्य स्पर्शेश अशक्त आत्मा बिंदित आत्मन यत सुखम, बाह्य स्पर्शों में जो आसक्ति नहीं करेगा तो आत्मा का सुख मिलेगा। स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, वो ब्रह्म के साथ एक होने से सुखम अक्षयम, अक्षय सुख मिलता है, अत्यंत सुख मिलता है, अत्यंत सुख कहो अक्षय सुख कहो, वो है परमात्मा का स्वरूप। अर बिंदित आत्मन यत सुखम, ये है सात्विक सुख। तो दोनों को मिलता है सात्विक सुख और सुख मिलता है, उस सुख में भी आसक्ति ना करे। एक समाध लग गया, मन लग गया, प्रसन्न हो गया, तो प्रसन्न हो गया तो वो योग का भोगी हुआ है। अगर प्रसन्नता से राजी होता है और कहते भाई बहुत अच्छा योग, साफ साफ प्रतीत होता है अपने में कर्तृत्व नहीं है, अपने में भोगतृत्व नहीं है, ऐसे का जो प्रसन्न होता है वो राजी होता है, ये सतोगुण मानता है। सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन, प्रसन्नता का सुख होता है, और ज्ञान कितना साफ है कि बिल्कुल जड़ता जड़ता नहीं है, चेतना अपने स्वरूप में है, इसका संबंध कुछ है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, ऐसे कर राजी होता है। वो राजी होना सांख्य योग अगर भोग करता है, उसमें राजी होता है, तो सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन, सुख संग्रह ज्ञान संग्रह सतोगुण बांधता है, उससे उदासीन रहे, उस सुख में लिप्त न होए, समाधि लग जाओ बेशक सुख हो जाओ, पर सुख में आसक्त न होए। ये सुख में आसक्त करने हुआ है जो कर्ण रहित मैंने कह रहे कर्ण निरपेक्ष, कर्ण निरपेक्ष वाला रहता है। बुद्धि अगर लगाकर समाधि करेगा तो कर्ण निरपेक्ष नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि की अपेक्षा होगी वहां पर। ये योग दर्शन में विभूति पाद है। विभूति पाद में क्या है, आठ अंग है, यम नियम आसन प्रणाम प्रचार धारणा ध्यान और समाधि। इनमें पांच अंग तो है साधन पाद में, तीन वो है विभूति पाद में, संयम मनो धारणा ध्यान समाधि, धारणा ध्यान समाधि, त्रैवेकत्र संयम, ये तीनों का नाम है संयम। उस संयम करने से मन बुद्धि इंद्रियों का संयम करने से सिद्धि होती है और समाधि होती है, उससे सिद्धियां प्राप्त होती है, मुक्ति नहीं होती। विभूति पाद में तरह तरह की विभूति हो गई, ध्यान होने पर खूब ध्यान लग गया, मन बुद्धि के सहित ध्यान होता है, उससे समाधियां पैदा होगी, मुक्ति नहीं होगी। अरविश वित्थानि सिद्धयः, और वे वित्थान में है सिद्धियां, और समाधि अवस्था के बीच में निर्विकल्प हो जाओ चाहे समाधि, परंतु निर्विकल्प होने पर छूटेगा नहीं। ये मन बुद्धि के साथ संबंध रहने से उस समाधि का उपभोग होता है, जब भोग में फंस जाएगा तो गुणातीत नहीं होगा, तो ये समता का भोग भी न करे। समता की उपेक्षा उदासीन 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 गुणे योन विचार लेते उदासीन उदासीन रहे, बड़ी शांति बहुत आनंद विलक्षण, परंतु उसका भोग न करे, मनु राजी न हो उस एकाग्रता में शांति में समाधि में अगर राजी होगा तो सुख संगेर ज्ञान संगेर बन जाएगा। राजी नहीं होगा तो हो जाए तो कर्म निरपेक्ष वाला राजी नहीं होगा, कर्म सापेक्ष मन बुद्धि लगा कर संयम करेगा तो मान धारणा ध्यान समाधि करेगा तो वो लिप्त हो जाएगा, उसमें सिद्धियां पैदा हो जाएगी, सिद्धियों में लग जाए उलझ जाएगा, फिर जन्म मरण चला जाएगा। इस वास्ते इनकी अपेक्षा न रखे कर्णों की, किंतु अपने स्वरूप में सिद्ध शांति से रहे। तो शांति जो मिलती है त्याग से, प्रजाहति यदा कामान सर्वान, कर्मयोगी की बात है ये, प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्ट सिद्ध प्रज्ञस्त दोषी, केवल अपने अपने आप से ही संतुष्ट है। जीवंत सुखो अंतर आराम अंतर ज्योति सहयोगी ब्रह्म निर्माणम ब्रह्म भूतोदि गच्छति, ये सांख्य योगी की बात है। जीवंत सुखो अंतर आराम अंतर ज्योति, वो ब्रह्म निर्माण प्राप्त हो जाता है, ये ब्रह्म भूत होकर के ब्रह्म रूप होकर के सांख्य योगी ब्रह्म भूत होकर के होता है, वो समता को लेकर होता है कि राही इंद्रिया से न कर्म सु अनुश्रद्ध से आसक्ति न करता तो वो योगारूढ़ हो जाता है, समता में स्थित हो जाता है। योग क्या है सांख्य की दृष्टि से, यही तीर्थ सर्गो ये सांग साम्य स्थित माना, जिन पुरुषों का साम्यावस्था में मन स्थित हो गया, मन में समता है, न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है, कि मृत ये तो बड़ी मुश्किल है, राग द्वेष तो होते हैं इंद्रिय से इंद्रिय से राग द्वेष व्यवस्थित हो तो व्यवस्थित है, ये व्यवस्थित का अर्थ अनुकूलता को लेकर राग होता है और प्रतिकूल के द्वेष रागानुसयी सुखम और द्वेषानुसयी दुखम है, तो देश देश और राग को लेकर सुख और दुख होते है, राग द्वेष नहीं हो तो शांति रहती है, पर वह शांति में रमण नहीं करना है। यदा ही नेन्द्रिया से न अनुसज्जते आसक्ति करेगा रमण करेगा तुम्हें अटक जाएगा, इस बात रमण नहीं करे किंतु तटस्थ रहे, अपने स्वरूप में न समाधि है न व्युत्थान है, उसमें न एकाग्रता है न चंचलता है। एकाग्रता चंचलता अंतःकरण में रही प्रकृति में रही है, अपने स्वरूप कहाँ एकाग्रता है कहाँ चंचलता है इसमें है ही नहीं, तो गुणा गुणेशु वर्तन्ते, कर्तृत्व अपने में नहीं है। सांख्य योगी के लिए खास बात है कि क्रियाओं में कभी कर्ता अपने को न बनावे, किसी क्रिया का कर्ता बन जाता है तो वह फंस जाता है, कर्ता के ऊपर फिर कर्म आसक्ति हो जाएगी कामना हो जाएगी लघु हो जाएगा। तो विभूति पाद सभी कर्तृत्व अभिमान रहने से होता है, कर्तृत्व अभिमान में विभूति नहीं होगी सीधी मुक्ति होगी, निर्वाण प्रकरण आगाड़ी। तो ये निदाई निंद्रिया से न कर्म स्वामु श्रद्धे कर्मी होगी और यही तीर्थ स्वर्ग साम्य स्थित मैंने सांख्य होगी मानो एक स्थिर तटस्थ है निर्दोष नहीं सबम ब्रह्म अपने अंतर्गत न राग है न द्वेष है। एक बात और समझ लो कि राग द्वेष हो जाए तो ये दोषी नहीं है, राग द्वेष हो जाने से जो सुखी दुखी होता है वो फंसना है। न प्रदर्शित प्रियम प्राप्य और नो द्विजेत प्राप्य सा प्रियम, सांख्य योगी को चाहिए कि प्रिय की प्राप्ति करके हर्षित में होए, न उद्वेग प्राप्ति सा प्रिय अप्रियम प्राप्त अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न नहीं होए। ये संसार के प्रति हो शरीर के अनुकूल प्रतिकूल मन के अनुकूल प्रतिकूल बुद्धि के अनुकूल प्रतिकूल इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल और अपना जो सिद्धांत है, चाहे ज्ञान का हो या कर्म का हो, उस सिद्धांत के अनुकूल प्रतिकूल। सांख्य योगी को सांख्य योगी बात ज्ञान की अच्छी लगेगी, कर्मयोगी फालतू मालूम देगी। तो ये सिद्धांत को लेकर राग द्वेष है सांख्य में। ऐसे भक्ति करने वाले को ज्ञान अच्छा नहीं लगता, तो भक्ति में राग है और ज्ञान में द्वेष है। ये राग द्वेष जगह जगह अनुकूलता प्रतिकूल लेके है। तो शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता, इंद्रियों की अनुकूलता प्रतिकूलता, मान्यता की अनुकूलता प्रतिकूलता और शास्त्रों की अनुकूलता प्रतिकूलता, द्वैत की और अद्वैत की अनुकूलता। द्वैत के अनुकूल द्वैत अच्छा लगेगा कर्म ज्ञान योगी हो भक्ति योगी हो, और सांख्य योगों को अद्वैत अच्छा लगेगा। तो ये सिद्धांत को लेकर अनुकूलता प्रतिकूलता है। इसमें राग द्वेष ये ठीक है बेठीक है मौज करो, फिर बंधन ही होगा। फिर बंधन होगा ही, बंधन से बच नहीं सकता। तो इसमें ना राग करे ना द्वेष करे, किसी तरह से ही राग द्वेष रहित होकर स्थित रहे। किसी राग द्वेष हो जाते हैं, इसमें एक बारीक बात है साधकों के लिए बड़ी काम की, वो सुनो आप कृपा करके। अच्छी स्थिति रहे उसमें अच्छापन मालूम देता राग होता है, और बुरी स्थिति रहे उसमें बुरा मालूम होता है। तो बुरा और भला मालूम दोष नहीं है। अच्छापन में सुख भोगना और बुरे में द्वेष करना, ये बंधन का कारण है। बंधन का कारण है, जैसे निष्काम भाव से कर्म करे तो निष्काम हो जाए जब खुश हो जाए, या सकाम आ जाए दुखी हो जाए, तो उसे जल्दी मिटेगा नहीं द्वेष, राग द्वेष नहीं मिटेगा। सुख दुख क्या है? निष्काम अपने को, निष्काम तो स्वत्व स्वरूप में है, और कामना तो केवल प्रकृति के संबंध से है। तो वो प्रकृति संसार का संबंध मानता कर्म योगी, और ज्ञान योगी मानता प्रकृति का प्रकृति के संबंध से है। वो फले सकते निबुद्ध थे कर्मयोगी, और वो अपने स्वरूप में विचलित हो जाता है, कर्तृत्व तो मान लेता तो फल जाता है। तो ना फल की इच्छा है न कर्म की, तब योगानुग अवस्था हो जाती है दोनों की। तो सांख्य योगी के ये सदा धारणा दृढ़ रहती है, स्वतंत्र स्वाभाविक। चाहे वो भजन ध्यान करे, चाहे जप ध्यान करे, चाहे समाधि लगावे, चाहे व्यवहार करे, व्यवहार करते हुए भी नहीं किंचित करो मेति युक्त तत्वित। तेरा क्रिया बताइए, पश्यन श्रृणन स्पर्शन जिग्रहण आसनन गच्छन स्वपन स्वसन प्रलपन विसन ग्रहणन उन्मिशन निमिशन। अभी ये इंद्रिया ने इंद्रिया से सुवर्तन थे, स्थूल सूक्ष्म और कारण। सुषुप्ति है वो कारण शरीर की है, चिंतन है ध्यान है ये सूक्ष्म शरीर का है, और क्रिया होना करना ये स्थूल शरीर का है। इन क्रियाओं में अपने कोई मतलब नहीं, ये सब प्रकृति का है, हमारा नहीं है, है ही नहीं हमारा। स्वयं में न क्रिया है न पदार्थ है, वो तो चिन्मय है केवल चैतन्यता। तो उस चैतन्यता में अपनी स्थिति है। राग द्वेष हो जाए तो राग द्वेष में राजी नाराज न होने, ये है राजी नाराज होना फंसना है। इंद्रिय से इंद्रियों से राग द्वेष हो व्यवस्थित हो तय और न भ्रष्मागत छेद। इनके वशीभूत कर्म योगी तो फंसे नहीं, ज्ञान योगी भक्ति योगी कोई भी, ये राग द्वेष में फंस गया मानो राजी नाराज हो गया तो फंस गया। आज तो ध्यान बहुत अच्छा लगा गया, राजी हो गया, भोग किया, वो योग का भोग है। सर्वथा संसार से अहित होकर एकाग्रता के भोग में लग गया तो योग का भोग होगा, योग सिद्धि नहीं होगी। भोग हो जाएगा वही पतन हो जाएगा, चाहे वो विषयों का भोग हो, चाहे धनवत्ता का भोग हो, चाहे अभिमान का भोग हो। अभिमान जन भी एक सुख होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का सुख होता है, मान का सुख होता है, आदर का सुख होता है, बड़ाई का सुख होता है, लोग अच्छा कहते हैं वो सुख होता है। इस सुख में अगर राजी हो जाए तो फंस जाएगा। और इसके सिवाय भोग नहीं मिले, मान नहीं मिला, आदर नहीं मिला, निंदा हो गई, निरादर हो गया, उससे दुखी हो गया तो फंस जाएगा। ना सुखी होना है ना दुखी होना है, ऐसे एकाग्रता हो जाए तो सुखी नहीं होना है, एकाग्रता न हो जाए तो दुखी नहीं होना है। ये तो प्रकृति में हो रहा है, अपने क्या संबंध है इनके साथ। ये तो प्रकृति में अनुकूलता प्रवृत्ति तो हो रही है, अंतःकरण में हो रही है, अपने में कुछ है ही नहीं। मैं तो कहूं विषयों का चिंतन भी हो जाए और कहीं उनका भोग भी हो जाए, परंतु राजी नहीं हो तो रस न ले, कुछ बिगाड़ नहीं करेगा आपको। इतनी एक सावधानी रखनी है कि ये सुख नहीं है, ये शांति नहीं है, ये तो नकली चीज है, प्रकृति के संबंध से है, प्रकृति से अतीत अपना स्वरूप है। सांख्य योगी तो ये समझा कि मेरा कुछ भी नहीं करता हूँ, क्रिया नहीं, सब क्रियाएं नान्यंग उड़े भी करता रम इजादृष्टान से, जिस काल में गुणों के सिवाय कर्ता नहीं मानता, कर्ता अपने अपने में लेस मात्र भी नहीं है, लेस मात्र भी कर्तापण नहीं है। तू नहीं वो किंचित करो में थी अन्य गुणे भी है, अन्य विशेष दोनों से गुणों के सिवाय कर्ता नहीं है, और गुण ही गुणों में भर रहे हैं, गुणों से ही क्रिया हो रही है, और गुण से नहीं वो किंचित करो में, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, तो स्वरूप में कुछ भी नहीं करता है। कितना एक सुंदर बात कही है, अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय, अयम ये परमात्मा है, अविनाशी है, अनादि होने से, तो अनादि तो प्रकृति पुरुषम विद्यनादि उभाव अपि दोनों ही अनादि है, पर अनादि होकर के निर्गुणत्वात प्रकृति निर्गुण नहीं है, सत्वम हृदय गुणा प्रकृति संभव, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, प्रकृति में तीन गुण रहते हैं, प्रकृति ऐसे गुण नहीं है। निर्गुणत्वात परमात्मा अभ्य शरीर स्थो भी कौन थे न करोते न लिप्यते, आपके बोध नहीं हुआ, अभी समाधि बहस नहीं हुई, वैसा अनुभव अपना नहीं हुआ, शरीर में स्थित है तो भी स्वरूप कर्ता भोगता नहीं है, शरीर स्थो भी कौन थे न करोती न लिप्य थे, न करोती में कर्ता नहीं है, न लिप्य थे भोगता नहीं है। यदा ही नेन्द्रियार्थे सु न कर्म सु अनुसिद्ध थे, और यश न अहंकृत भाव, अरे ये बुद्धि यश न लिप्य थे, अहंकृत भाव नहीं है अपने में, क्रियाओं हो रही प्रकृति से हो रही है, अपना अहंकृत भाव नहीं है, अरे बुद्धि में लेप नहीं, आसक्ति नहीं है, दुनिया मात्र को मार डाले एक साथ, न मारता है न पाप लगता है, ये पाप लगता है राग द्वेष से, इसमें फंस जाने से, अच्छा और मंदा मानने से, राजी और नाराज होने से पाप और पुण्य लगता है, उसे फंसता है। तो जिसके अहंकृत भाव नहीं, बुद्धि में लेप नहीं, राग भी नहीं कहीं भी, तो दुनिया संपूर्ण को एक साथ मार डाले तो न मारता है न बंधता है। गंगा जी का जल है, इससे कई खेतियां हो गई, कई गऊं पी गई, कई ब्राह्मण स्नान कर गए, कई ब्राह्मणों का खेती उग्र ब्राह्मणों का सब अनुष्ठान हो गया, और गायें बह गई और ब्राह्मण बह गया मर गया, तो गंगा जी को पाप और पुण्य लगेगा क्या? न पाप लगाना पुण्य क्यों नहीं लगेगा, कि गंगा जी में है ही नहीं कि इन गायों को मार दूं, इन ब्राह्मणों को मार दूं, ये उसमें है ही नहीं, और इनको तार दूं, इनको ठीक कर दूं, खेती ठीक कर दूं, सब दुनिया ठीक हो जाए, ये है ही नहीं, तो उसे न पाप लगता न पुण्य लगता। ऐसे ज्ञानी महात्मा तत्व की है, सांख्य निष्ठा वाले है, उनसे कोई हो भी जाए भूल करनी नहीं चाहिए कभी, इसका अर्थ ये नहीं चाहे जो करो, पर गीता में कहा है सर्वथा वर्तमान हो भी सहयोगी न पुनरावर्त भूल जाते हैं भाई, तो सर्व काम करता हुई फिर जन्म नहीं लेता, जन्म में कारण है, कारण गुण संगो से सदस्य, वो गुण चाहे रजोगुण में हो चाहे तमोगुण में हो चाहे रजोगुण में हो सतोगुण में हो, कहीं भी गुणों का संग होगा तो जन्म लेना ही पड़ेगा। ऊर्ध्वगत संति सत्वस्था मध्य संति राजसा अधोगत संति तामसा, और गुण नहीं है, गुणों से अलग है, तटस्थ है, और वास्तव में तटस्थ है, ये होना नहीं है, तटस्थ बनना नहीं है। स्वरूप में न राग है न द्वेष है, न हर्ष है न शोक है, वो तो है जो में तत्व है, उसमें कहा राग द्वेष है। तो अपने में राग द्वेष कभी माने ही नहीं, घोर प्रवृत्ति हो जाए तो भी अपने में नहीं, ये तो इंद्रियों में हो रही है, अंतःकरण में हो रही है, पाखंड नहीं करे, अनुभव करे, ऐसी नकल नहीं करे किंतु अनुभव करे कि हमारे में न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है, ये तो इंद्रियों में हो रही है। तो होती हुई आपको बांधती नहीं, दुनिया में कई पाप और कई पुण्य हो रहे हैं, क्या वो हमारे को बांधेगा? जो इस शरीर में हो रहा है तो दुनिया का शरीर इस शरीर में क्या फर्क है? कुत्ते के शरीर में इस शरीर में क्या फर्क है? अगर आपके स्वरूप का संबंध इस शरीर के साथ है तो कुत्ते के साथ नहीं है क्या? कुत्ते के अंतःकरण के साथ संबंध नहीं है आपका? गधे के सूअर के अंतःकरण के साथ आपका संबंध नहीं है क्या? उनके साथ संबंध है, तो उनके राग द्वेष से तो आप हट रहे नहीं, इसमें राग द्वेष हो गया, तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो देहाध्यास है, देह में मैं हूँ, मेरापन है, इसी से ये होता है। तो ये होता रहे, अच्छी बात है, राजी होए नाराज होए, ठीक होए बेठीक होए, अपनी नियत केवल परमात्म तत्व में निरंतर स्थित रहना है, न राग करना है न द्वेष करना है, न सुखी होना है न दुखी होना है, कितनी मौज की बात है। स्वभाव बंद स्वभाव ही मुक्त हो जाएगा, सर्वथा वर्तमानों की न से भूयोगी जाएगी थी, और भक्तियों की सर्वथा वर्तमान सहयोगी में ही वर्तते, वो सर्वथा वर्तमान दोनों है, वो मेरे में ही रहता है, अरे फिर पैदा भूता पैदा हुआ भी, क्योंकि प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ अपना संबंध नहीं है, तो अपना संबंध के साथ है नहीं, ना समाधि के साथ संबंध है, ना ध्यान के साथ संबंध है, ना व्यापार के साथ संबंध है, ना बोलने सुनने के साथ संबंध है, ना व्याख्यान देने के साथ संबंध है, ना व्याख्यान सुनने के साथ संबंध है, अपना संबंध कैसा? ये तो गुणागुण से बर्तन से मौका आ गया, जैसी वार्ता हो गया, अपने से कोई लेन देन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। कितना ही काम अच्छा हो मंदा हो, परिस्थिति अनुकूल आवे प्रतिकूल आवे, अपने क्या मतलब उनसे? अपने संबंध नहीं है, तो संबंध है तो संपूर्ण दुनिया के साथ है, नहीं तो इस शरीर के साथ कैसे? इस शरीर में आए राग द्वेष बुरा लगे तो इसका सिद्ध होता है कि तुम शरीर में स्थित हो, शरीरस्थ हो भी मानते न करो थी न देते, वो वास्तव में तत्व से कर्ता नहीं है, निप्त होता नहीं है, कर्ता निप्त मान लेता है, कर्ता हम इसी मन्य थे, कौन काम का से मूढ़ आत्मा, अपना कर्ता ही नहीं तो भोगता कैसे होगा? बुद्धि में लेप क्या होगा? अपनी बुद्धि लेप ही नहीं है। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा यम अव्यय शरीरस्थो भी न करो थी, तो यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धि यश न लिपते हत्वा भी से मान लो का न हंसी न निवजते, वो तो है जो कच्चे ही है अपना। जैसे सूर्य उदय हुआ और सूर्य अस्त हुआ, तो उदय होने से प्रकाश हो जाता है, अस्त होने से अंधेरा हो जाता है, हमारे क्या साथ संबंध? उदय हो तो हमारे साथ संबंध नहीं, अस्त हो तो हमारे साथ संबंध नहीं। वर्षा आई वर्षा आई, वर्षा बंद हो गई, थोड़ी आई ज्यादा आई बंद हो गई, तो न वर्षा के आने के साथ हमारा संबंध है, न वर्षा के ज्यादा के साथ संबंध है, न कम के साथ संबंध है, न वर्षा बंद के साथ संबंध है। ये तो होता है गुणागुणेषु वर्तन्ते, हो रही है, उसमें राजी नाराज न हो। हमारे मत का मानने वाला आज राजी हो जाएंगे, दूसरा मत मानता हम ज्ञान मार्गी है आप भक्ति मार्गी है, तो कि भक्ति मार्ग ये भेदवादी मातवादी की चीज है, ये है ना, ठीक नहीं है, इसका नाम द्वेष है, ये नहीं हो कुछ नहीं, भेदवादी वो अभेदवादी वो, मतलब क्या अपने अपने उनसे मतलब नहीं है, ना लेना है ना देना है, भेदवादी हो चाहे अभेदवादी हो किसी वादी हो, अपने क्या मतलब है? बुरा लगते हैं ये द्वेष है, और अभेदवादी अच्छे लगते हैं ये राग है, ये राग द्वेष विचरण नहीं होना चाहिए, किंचित मात्र भी न प्रतिशील प्रेम प्राप्त प्राप्त प्रेम अद्वैत सिद्धांत प्रिय लगता है तो वो बात मुझे अच्छी लगती राग हुआ और द्वैत सिद्धांत बुरा लगता है द्वेष हुआ। न प्रेम प्राप्त प्रतिशील न अप्रियम प्राप्त उद्विजित न हो गए। अरे द्वैत वस्तु ये द्वैत वस्तु क्या है नहीं है तो केवल पूर्ण हो रही है या पूर्णा पूर्ण हो रही हो रही है हो रही है अपनी क्या मतलब वृक्ष हल रहे है सुधारा हुआ कपड़ा हिल रहा है तो क्या मतलब उसमें पाण्य पाप पुण्य पैदा होगा वृक्ष हलने से के पाप लग जाएगा फल गिर गया तो पुण्य हो जाएगा गिरो इन क्रियाओं से कोई अपना मतलब नहीं। क्रिया और पदार्थ से संबंध व्यक्ति वस्तु और अवस्था से संबंध है यही बंधन है अपना संबंध है ही नहीं। तटस्थ होकर गुणा गुणी सुवर्तन थे तो सांख्य योगी गुण ही गुण में वर्त रहे इसी मतवा न सज्जते आसक्त करते ही नहीं किसी में ही और प्रकृति उच्च क्रियमाणी केवल प्रकृति द्वारा क्रिया होती है तो कहीं गुणा गुण सुवर्तन थे कहा कहीं प्रकृति कर रही कहा कहीं इंद्रियाणी इंद्रिया से वर्तन से कहा कहीं पांच हेतु बताए अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णन से पृथक विविधा से पृथक श्रेष्ठा दैव चैवात्र पंचम शरीर वांग मन होगी शरीर से वाणी से मन यत कर्म प्रारंभ से कर्म शरीर वाणी और मन ये सब है क्या हुए इंद्रिया अंतःकरण हुआ संपूर्ण इंद्रिया अंतःकरण यदि प्रारंभ जो आरंभ करता है पंच हेतु तशेष पांच हेतु अधिष्ठान करता कर्म करण हो रही है विविध चेष्टा तो ये सब प्रकृति में हो रही है। अब प्रकृति में हो रही और प्रकृति में होती होगी हमारे क्या राग और क्या द्वेष हो कहीं भी हो चाहे इस शरीर के द्वारा हो उस शरीर के द्वारा उस शरीर के द्वारा हो है तो प्रकृति एक तो प्रकृति द्वारा हो रही है हमारी कुछ कर्ता होता ही नहीं हम करते है ही नहीं कर्तृत्वभाव है ही नहीं होता रहे तो मस्त रहता अपने स्वरूप में सदैव नैव कुरुन न कार्यन न करता है न करवाता है न करवाता है इंद्रिया इंद्रिया से प्रसन्न थे इंद्रिया बस रही है अपना सब कर रहा है भोजन हो रहा है अपने भोजन हो रहा है बस हो रहा है ऐसे भोजन पस रहा है करने में भोजन करने में तो अहंकार करता है और पसने में अहंकार नहीं करता है। मेरा इतना पचा लिया है इतना पचाना बाकी है ऐसा दिखता है यंत्रों से कोई देख ले भले ही पर तो पकाता हूँ ये होता ही नहीं ऐसे भोजन करता हूँ इसमें भी ये गुणा गुणी सुबर्तन है खुदा पिपाशा प्राण से मन से शोकमोह को शोकमोह मन के मन में होते हैं ये विकार है ये मन के धर्म नहीं है। मन के धर्म हो तो हर दो मन में राग द्वेष रहना चाहिए मन में राग द्वेष बुद्धि में हो तो बुद्धि रहे तब से राग द्वेष रहेंगे बुद्धि नहीं रहेंगे तो राग द्वेष मिटेंगे और बुद्धि रहते हुए अबार इतनी आपकी बुद्धि जागृत है सुनने में लगे हो क्या राग द्वेष है क्या हरक शोक है तो बुद्धि के धर्म नहीं है मन के धर्म नहीं है मन के विकार है। कब तक कि जब तक आपका जड़ के साथ संबंध है कर्ण के साथ संबंध है कर्ता के साथ संबंध है प्रकृति के साथ संबंध है गुणों के साथ संबंध है तब तक आप में कर्म है। आप में कर्म है नहीं करता हम इसी मन्यते आपने माना है तो नैव किंचित गुणो मिति युक्तो मन्यते मान्यता को मान्यता से हटा हुए तो हमारे में कर्तृत्वपण नहीं है ऐसा हटा तो इंद्रिय इसी धार्य नैव किंचित करो मैं कुछ करता हूँ ही नहीं बिल्कुल आकर्षित होगा होता है साफ चेतन में कोई हलचल नहीं कभी कर्तापन हुआ नहीं कर्तापन होगा नहीं और हो सकता नहीं। अब कर्म निरपेक्ष के मैं कर्तृत्व नहीं है तो कर्म कहाँ रहेगा मुख्य तो कर्ता है स्वतंत्र कर्ता क्रियायाम स्वातंत्र विभुष होता कर्ता है और साधक तब हम कर्णम कर्ता भी नहीं तो कर्म कैसे रहेगा कर्म कैसे रहेगा संप्रदान कैसे अप्रदान कैसे होगा अधिकरण कैसे होगा कर्ता पड़ी खट गया खत्म हो गया तो सबसे मुख्य कर्ता है वो कर्ता पड़ नहीं है तो क्या है चेतन है स्वभाव है ज्यों का त्यों रहता है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परिवर्तन नहीं होता है जो है, तो उस तत्व का अनुभव होता है सांख्य योगी। सांख्य योगी ऐसा अनुभव करे। इसमें एक बताऊंगा और बात ध्यान देने की, साधक को चाहिए कभी कर्तृत्व भाव आ जाए, कभी भोक्तृत्व भाव आ जाए, तो समझे कि ये इंद्रियों के अंतर्गण के संबंध से है। वो संबंध मैंने पहले माना है, उस संस्कार से है, अपने में नहीं है। बिल्कुल सत्य है, शरीर स्थो भी कौन थी न करोती, शरीर में स्थित हुआ भी, शरीर में स्थित है कसाई जैसा पुरुष, वो भी शरीर में स्थित है, तो न करोती न लिपते, तो वो स्वरूप तो वैसा का वैसा है जैसा तत्व की जीवन मुक्त का है। उसमें और कसाई के आत्मा में फर्क नहीं है, आत्मा वही है, वो कसाई पड़े में लिप्त हुआ है, वो अपने ज्ञान में क्रिया में पदार्थों में भोगों में अवस्थाओं में कोई लिप्त नहीं, चाहे ज्ञान अवस्था हो अज्ञान अवस्था हो चाहे समाधि अवस्था हो चाहे व्युत्थान अवस्था हो, कोई अवस्था हो पर क्या मतलब, अवस्थाओं संबंधी नहीं है, अवस्था से अतीत है, गुणों से अतीत है, प्रकृति से अतीत है, उसे क्या फर्क पड़ता है। तो कभी हो भी जाए तो एक बात और बार बताऊं, अनादि काल से हम कर्म कर से आए हैं, उनमें राग द्वेष हो रहा है, वो राग द्वेष के संस्कार भीतर पड़े हैं, वे उद्बुद्ध होते हैं नष्ट होने के लिए। साधक मानता है कि मेरे में राग द्वेष है, फिर चलता है मेरे में राग द्वेष है ही नहीं, ये राग द्वेष क्या है, ये तो नष्ट हो रहे हैं बेचारे। आप जब स्वरूप में स्थित होते हो तो ये राग द्वेष नष्ट होने के लिए उभरते हैं, तो उभरते में थोड़ा सा हंस देना चाहिए, राग वो द्वेष वाह ठीक है, मानो उनके साथ मिले नहीं, अपने में माने नहीं, हाय हाय द्वेष क्यों हो गया, हाय हाय राग क्यों हो गया, वो क्या गया, हुआ है ही नहीं, केवल पहले के राग और द्वेष के जो संस्कार है वे उभरते हैं नष्ट होने के लिए, तो राजी हो जाएगी ठीक है, कृपा हो गई भगवान की, भक्ति वाला कृपा मान लेगा और ज्ञान वाला गुणागुण सुवर्तन से मान लेगा। योगी क्या है कि ये तो होता है स्वभाव है संसार का, अपना समझ नहीं, हमारे राग द्वेष है ही नहीं, किसी जगह ही ऐसे निर्लेप रहे, तो निर्लेप है रहना नहीं है, निर्लेप बनना नहीं है, नहीं तो से कृत्य नार्थ करने से मतलब नहीं, न कृत्य अकृत्य से नहीं है, जीवन मुक्ति है सब, जीवन मुक्ति के लिए विद्युत संन्यास होता है, एक विविदिशा संन्यास होता है, एक विद्युत संन्यास होता है, संन्यास दो तरह का होता है, विविदिशा संन्यास तत्व को जानने के लिए संन्यास्य श्रवणं कुर्यात्, अब श्रवण मनन निर्देशन करेंगे संन्यास करके, वो विविदिशा संन्यास है, और विद्युत संन्यास के हमारे कुछ कर्तव्य नहीं है, विद्वान बोध हो गया अब संन्यास ले, विद्युत संन्यास है किस वास्ते, कहते अगाड़ी ऊंची भूमिका चढ़ने के लिए, ये गलत है, ऊंची नीची क्या होती, ज्ञान की भूमिका होती है, भूमिका प्रकृति में होती है, और प्रकृति संत से ही शुभेच्छा शुभाख्या ज्ञान में शुभेच्छा क्या प्रथमा प्रकृति था, और द्वितीय शुभ ज्ञान शुभेच्छा सुविचारणा और तनुमानसा सत्वापत्ति असंशक्ति पदार्थ भाव ने और सूर्य का, ये सात भूमिका है, ये भूमिका प्रकृति को लेकर के स्वरूप को लेकर एक भी नहीं, तूर्य का है उसमें स्वरूप मानते हैं, तो तूर्य का प्रकृति के लिए विद्युत संन्यास करना है फिर होगा, क्योंकि संसार विक्षेप होता है, अब विक्षेप दुनिया मात्र में हो रहा है उसका तो ज्ञान है नहीं, एक में होता है जो ज्ञान होता है, तो देहधारी तो हो गया, देहाभिमानी हो गया, अब कैसे जीवन मुक्ति करेगा, देहाधारी की जीवन मुक्ति होती है, ये देहाध्यासी है, अपने है ही नहीं, पिंड छूट जाए सबसे ही आपसे आप ही, क्योंकि अपने में है नहीं, मिटाना नहीं है, मिटाना है वो तो उसको दृढ़ करना है, राग द्वेष को मिटाओगे कि ये मिटाना है, तो मिटाना करोगे पहले दृढ़ मानोगे तो मिटाओ नहीं, अध्यारोप वादाभ्यम अध्यारोप अध्यारोप करो फिर उसको मिटाओ, तो मिटाने में अध्यारोप को दृढ़ करना है, राग द्वेष को मिटाना, राग द्वेष को दृढ़ करना है, क्यों दृढ़ हुए मिटाती क्या हो, आप में है तो मिटाते हो ना, तो इसको दृढ़ क्यों करे, है ही नहीं अपने में, खत्म हुआ पहले से ही, अपने कोई मतलब ही नहीं है, इन चीजों के साथ संबंध ही नहीं है। तो राग द्वेष हरक शोक हो जाए तो कोई परवाह नहीं, हो जाए तो कोई परवाह नहीं, होते से कृषि न अर्थ न अकृषि न, तो जीवन मुक्ति अकृषि न करने से अलग होने से मतलब हुआ न सिद्ध, तो गीता के अनुसार सिद्ध नहीं है वो, क्योंकि न करने से मतलब है, नहीं होते से कृषि न अर्थ न अकृषि न अकर्ष नशा से सर्वभूत प्राणियों किसी के साथ स्वास्थ्य का संबंध किसी के साथ कभी हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, और संबंध कभी हो ही सकता ही नहीं। ये प्रकृति का खेल है जो आप से आप हो रहा है, निरंतर हो रहा है, वर्षा हो रही है, कभी हवा चल रही है, कभी वायु चल रही है, कभी ठंडी आ रही है, कभी गर्मी आ रही है, अब क्यों तो राजी नाराज हुए, ये उड़ता तीर लेना, ये मारवाड़ी का उड़ता तीर, मन तीर चला रहा सामनेदार खड़ा रहे तीर लग गया सा, तो उड़ता तीर क्यों लिया, जड़ने से ये संसार तो उड़ता तीर है, प्रकृति उड़ता तीर है, अपने में है ही नहीं, ये तो उड़ता तीर लेता है, तो मारा सही हो गया सर, मारे कर दू, अब तीर क्यों खा रहे भाई, बाटो साल मतलब क्यों मर रहे, ये मतलब फूट गयो, मतलब फूटे जैसे काम किए पत्थर साल फूटे गए, अपने तो इनको मतलब नहीं है, कोई पत्थर से मतलब है, कोई तीर से मतलब है, ना सुख से मतलब है, ना दुख से मतलब है, ना अच्छी वृत्तियों से मतलब है, ना बुरी वृत्तियों से मतलब है, अपनी वृत्ति से अतीत तत्व में स्थित है, वो वृत्ति है ही नहीं, ना अच्छी है ना बुरी है, न प्राप्त नो दीजिए प्राप्त स्थिर बुद्धि असमूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्म स्थित ब्रह्म देखता है, निरंतर ही वही ब्रह्म ज्ञानी है वास्तव में, इनमें राग द्वेष करता है, हरक शोक करता है, अनुकूल तपस्या दो पड़ती है, एकांत में तो ठीक लगता है, व्यवहार में हमारे काम ठीक नहीं लगता, व्याख्यान देना बढ़िया लगता है, एकांत बढ़िया लगता है, एकांत तो अच्छा नहीं लगता, व्याख्यान अच्छा लगता है, कहीं व्याख्यान तो अच्छा नहीं लगता, एकांत अच्छा लगती है, क्यों राग द्वेष फंसना है भाई, ना वो अच्छा है ना वो अच्छा है, बुरा तो फंसना है, किसी को बढ़िया समझो किसी को घटिया समझो, द्वेत आवेगा ही द्वेत, नाम भले अद्वेत करते हो, द्वेत तो खास कर लेते हो आप, इस वास्ते इनसे कोई मतलब नहीं है, नहीं वो किंचित करो में से किंचित माधवी नान्य गुणे भय करता रही यदा दृष्टान अन्य कर्ता के सिवाय अन्य है ही नहीं, गुणे भय से परम वेद थी, ये पर गुणों से पर है, स्वयं स्वयं है पर है, स्वयं स्वयं ध्यान देना, स्वयं तू स्वयं यह स्वयं वह स्वयं मैं, तो स्वयं है कुछ नहीं है, तू मैं यह वह मैं है, जो बंद रहो न तू है न मैं न यह है न वह है, ये तो प्रकृति है, स्वयं है जो का तू है सब में, उसमें किसी के साथ लेप नहीं है, अरे किसी में लिप्तता मान ली तो वही बन गया, वही फंस गया, तो न करो थी न लिप्त थे, लिप्तता होती ही नहीं, गुना गुणे सुवर्तन थे होता रहे, अपनी क्या मतलब हुआ, वर्षा आई तो ठीक, गर्म हवा आई ठीक, ठंडी हवा आई ठीक है, बलती बलती लू आई, अब उसे क्या मतलब पड़ा, ये तो आते जाते रहेंगे, तुम्हारे करने से होंगे नहीं, अब बस उड़ते चीज क्यों है भाई, हवा बह है कभी गर्मी बह है कभी सर्दी हो रहे कभी वर्षा बह कभी ओला गिरे कभी हवा चले चलता है, यूं ही शरीर में कभी राग कभी ठीक होता है कभी बेठीक होता है कभी बीमार होता है कभी स्वस्थ हो जाता है कभी राजी हो जाता है, क्या कर रहा है ये कौतुक क्यों फंस रहा है तू उड़ता तीर क्यों लेता है भाई, मैं जो ये हो जा ठीक ये हो जा तो ठीक। स्वयं ज्योति महाराज ने पूछा कि महाराज जीवन मुक्त क्या होता है बंधन क्या होता है, न्यू और न्यू होता है बंधन है, यू और न्यू होना भी कुछ नहीं होता है, मुक्त है, न्यू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यू होना चाहिए ये ठीक है ना बेठी यही बंधन है, न ठीक है न बेठी है, तत्व में क्या ठीक है क्या बेठी है क्या अनुकूलता है क्या प्रतिकूलता है, ये है क्या द्वैत सी वस्तुओं की द्वैत वस्तु कोई चीज है, तो क्या राजी क्या नाराजी हो, प्रेम प्राप्ति ये प्रिय अप्रिय तो दिखेगा। इस श्लोक का अर्थ मेरे समझ में नहीं आया था। मैं शिव जी के पास में आया तो मेरे समझ में नहीं आई बात कि न प्रेम प्रेम प्राप्ति, प्रिय को प्राप्त करके हर्षित न हो नोदित प्राप्ति से अप्रियम, अप्रिय को प्राप्त उद्वीर नहीं हो। प्रिय हर्ष प्रिय अप्रिय तो है, प्रियम प्राप्य न प्रेत, अप्रियम प्राप्य न उद्विजेत। तो प्रिय अप्रिय दो हो गए अपने, हर्ष हो क्या हुआ अलग, ये प्रिय अप्रिय दो तो रह गया उसके। शिव जी ने कहा कि प्रिय अप्रिय तो शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता, इंद्रियों की अनुकूलता प्रतिकूलता, अंतकरण की अनुकूलता प्रतिकूलता, सिद्धांत की मान्यता की अनुकूलता प्रतिकूलता, परंतु ये प्रिय अपनी प्राप्त से हर्षित उद्वीन नहीं होता। होता है अनुकूलता प्रतिकूल दिखती है, ये अनुकूल है साहब, ये भोजन अनुकूल है, ये भोजन प्रतिकूल है, ये बुखार है जिसके कुपथ है जो त्याग अनुकूल है, एक कुपथ ग्रहण का प्रतिकूल है, ज्ञान हो गया ज्ञान ग्रहण कर दिया, अब हर शोक क्या। इसमें राजी नाराजी की बात है ही नहीं, राजी नाराजी का अर्थ है तुम फंस गए, उसको चेप चिप गए बीच में चिप गए तो फंस गए। एक राजा थे वो एक संत के पास गए, वो साधक था, उस राजा ने कहा मेरे पुत्र हो जाए कि हो जाएगा। गुरु जी आने किया कि महाराज आया तो उसको मैंने पुत्र दे दिया कि पुत्र है नहीं तू जाओ बेटा बनो वहां। तो वह साधु था ही मर गया, मर करके वहां जन्म गया, जन्म गया वो बोले नहीं, बड़ा हो गया फिर भी लड़का बोलता नहीं, लड़के तो याद है बोला जरूर से मरेगा बोला नहीं। तो एक दिन हमारा कोई पक्षी बोलता था, पक्षी बोल रहा ठीक है, लोगों ने जार कहा राजा से कि पक्षी ठीक कहता है, शिकारी ने बाण मार दिया तो कि बोला और मरिया, ये बोल गया आज तो राजकुमार बोले जार बोले कि बोला और मरिया, तो तू ही बोले वो मरेगा, तो बोला और मरिया कि राजकुमार कुछ तो बोलो कि बोल यार मरिया, तो बोलो कि बोल यार मरिया, फट प्राण छोड़ दिया अपना, बोल यार मरिया, बोले मरे मैं भी बोल दिया तेरे बेटा हो जाएगा, जो नाटदार गर्भ में जाना पड़ा तो मैं क्यों जाता, बोल यार मरिया सब ठीक बेटे किया वहीं खत्म हुआ। तो ना अच्छा बने ना बुरा बने, ना किसी को आशीर्वाद दे ना किसी को वरदान दे, ना किसी की भलाई करे ना बुराई करे, इसका अर्थ ये नहीं उपकार ना करे। शरीर है इनके द्वारा उपकार होना चाहिए, मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा पदार्थों के द्वारा व्यक्तियों के द्वारा वस्तुओं के द्वारा सबका हित हो। तो ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो सबका हित हो ये करना है, और हमारे क्या मतलब है, हमें कुछ लेना नहीं देना नहीं, कुछ मन मतलब नहीं किसी से ही, न प्रीति से प्रेम प्राप्य। तो प्रिय की अप्रिय की प्राप्ति होने से दोष नहीं होता, क्यों गर्मी है तो ठंडी हवा अच्छी लगेगी और सर्दी है तो गर्म हवा अच्छी लगेगी। अपने अच्छा है इनको मंदा, अपने अच्छा मंदा क्या है, अपने तो उनका भी देख लिया वो भी देख लिया, देखो निरपक हुए तमाशा, निरपक रहो किसी के साथ राग द्वेष नहीं, तो स्थिर बुद्धि रसमूढ़ हो, बुद्धि स्थिर है असमूढ़ मूढ़ता उसमें नहीं है, ब्रह्मवित ब्रह्मणी से था ये शांति योग होता है, ब्रह्म को जानता है तो जानता है स्थित होना दो चीज नहीं है, तत्मंग तत्व तो ज्ञातवा तद अनंतरम विशेष अंतर नहीं पड़ता, जहां जाना वहीं प्रवेश हो गया, प्रवेश तो पहले से था ही, अनजान पड़ा मिट गया, अज्ञान मिटता है ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान होता नहीं है। यद्यपि ज्ञान की उत्पत्ति लिखी है, ज्ञान में उत्पत्ति थे पुरुषाम क्षयात पाप से कर्म, पाप कर्म क्षय होने से ज्ञान उत्पन्न होता है, उत्पन्न नहीं होता अनुभव होता है, और जब लय विक्षेप आश्रित दोष रहते हैं तो उसका अनुभव नहीं होता, मन ज्ञान पैदा नहीं होता। तो ज्ञान वास्तव में स्वरूप का बोध नहीं होता है, संसार का बोध होता है। संसार के बोध होते संसार की निवृत्ति हो जाती है और फिर स्वरूप है जो बाकी रह जाता है सुख है, वो बोध बोध इसका नहीं होता। संसार का बोध होता है, तत्व का बोध होता नहीं है। अब भी मैं हूँ इनमें क्या संदेश है? होनापन तो स्वतः सिद्ध है, ये होगा नहीं होगा। सारसा जो संसारी पड़ा है, मैं मनुष्य हूँ, पशु हूँ, पक्षी हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ये बड़ा हुआ, ये बड़ावटी बेटा मिटेगा है, उसको क्या मिटेगा क्या बढ़ेगा। तो ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थित स्वतः स्वरूप में स्थित है, ये सांख्य योगी की चाल है। परंतु बहुत और भी हो सकता है, परंतु समय जवाब देता है तो यहाँ कर देते हैं। अब इनमें शंका जो बोलो आप, जो जो शंका हुई वो बोलो, खूब कहें फिर ऐसी तरह से समझ करके शंका करें तो मेरे को प्रिय बहुत लगती है। मेरे में शंका करें, ये कैसे कहा आपने, ये कैसे कहा, तो बताओ, नहीं तो बस चिड़ी पंखेरी ले उड़ गई, अरे अरे बस चिड़ी पाव भर भी बोझा नहीं, पांच सिर कैसे उड़ गई, कुल पूछे अरे नमा कथा हो गई। ये कथा है, ये तो महाराज पांच सिर लेकर के चिड़िया एक छोटी सी पाव भर बोझ उसमें और पांच सौ देर उड़ गई। अरे नमा अरे नमा सुन दी सुना ली, तो ये नहीं है ऐसे। इसमें तो आप बताओ ये कैसे कहा आपने, ये पूछो आप खूब कैसे अच्छी तरह से खबर लेंगे, खबर कैसे कह दी आपने, खबर लो तो खबर लोगे तो घर में खबर हो जाएगी। असली असली चीज की खबर हो जाएगी, सदुगर करी ओळखाई ओळखा हो जाएगा और कुछ नहीं है, ओळखा असंधपना होगी ओळखा नहीं है। नष्ट मोह स्मृति ने लब्धा, मोह नष्ट हो गया, स्मृति मिल गई, लब्धा लादी लादी लादे चीज वही जो पहले से है। मैं तो कहूँ हृदय में कोई शब्द नहीं मिलता, लब्धा है लादी है लभ भी है लब भी है, ये शब्द है लब भी है पंजाबी, लब भी है मीन बीकानेरी, लादी है जोधपुरी भाषा है। पढ़ो हिंदी में पाई है तो पाई नई भी होती है पुरानी भी होती है, मगर लादी पुरानी ही होती है नई होती ही नहीं। तो स्मृति लगभग स्मृति मिल गई है अपने को, तो जैसे कर्ण स्वामी गाया माला मिल गई आशा ये डोर तो मिल गया मिल किया गया, कहीं गया ही नहीं, भूल हो गई भूल बन ली भूल मिट गई, मिटती भूल है तत्व थोड़े ही मिटता है, तत्व का ज्ञान होता थोड़ा ही है, भूल का ज्ञान है, भूल का ज्ञान होती भूल मिट जाती, भूल का कायदा है जहाँ भूल मानी मिटी, इतनी देर है देरी का काम ही नहीं है। क्या कहते हैं, हाँ शरीर की गुण ही है, संसार मात्र गुण है, गुणों का कार्य सत्व रस तम ये गुण है, इस गुणों का कार्य ये संसार है, तो गुणा गुणेशु पदार्थ है वो बर्थ रहे बस, आपस में फंस रहे, इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन थे, अपने उसे न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है न अच्छा है न मंदा है, ये तो बस रहा है। नारायण 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 नारायण।